તારીખ 9/6/1996 માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા.
મૌની કે વિષય મેં કિસી પ્રકાર કા આકુલ વ્યાકુલપણા હોના ઉસે શ્રીમદજી ને દર્શન પરિસર કહા હૈ તો ઉસમે વે ક્યા કહેના ચાહતે હૈં એસા પ્રશ્ન હૈ. સમાધાન હૈ, પરમાર્થ કી પ્રાપ્તિ કે લીએ ઔર યથાર્થ આકુલતા હોવે યે દર્શન પરિસર હૈ. આત્માર્થ ઔર યથાર્થ ઉતાવળ નહીં કરતા, પરંતુ ઉસમે ધીરજ ચાહીએ. ધીરજ રખે તો સમ્યક દર્શન કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. આત્મા કૈસે પ્રાપ્ત હો, મેં ક્યા કરું, અભી ભી ક્યોં પ્રગટ નહીં હોતા હૈ, ઇસ પ્રકાર કી સબ આકુલતા હોતી હૈ. યે એક જાત કા પરિશ્રમ હૈ, ઉસમે દર્શન કા નિમિત્ત હૈ ઔર કાર્ય નહીં હોને મેં ઉપાદાન કારણ અપના હૈ. ક્યા હોતા હૈ અપ્રાપ્તિ કા ખેદ, ઇસકી આકુલતા, ઉસકો યહાં દર્શન પરિસર કહા હૈ. દર્શન પરિસર માને ક્યા કે સમ્યક દર્શન કી અપ્રાપ્તિ કા ખેદ હોના, આકુલતા હોના, ઉસે કહેતે હૈ દર્શન પરિસર. આત્મા કા જ્ઞાન સ્વભાવ કિસ વિધિ સે ગ્રહણ હોવે, રાગ સે મેં કૈસે ભિન્ન હો, ભિન્ન અનુભવ કરો, ભેદ જ્ઞાન કૈસે હો, પ્રજ્ઞા શ્રેણી સે સૂક્ષ્મ હોકર કે અંદર મેં જ્ઞાન કો કૈસે ગ્રહણ કિયા જાતા હૈ, ઇતના સમય હોને પર ભી કાર્ય ક્યો નહીં હોતા હૈ, એસી એસી સબ અંદર મેં આકુલતા હોતી હૈ, ફિર ભી ઉસમે શાંતિ રખે કે મેરી ભાવના હૈ તો હોને હોને વાલા હૈ હી, પ્રયત્ન કો ચાલુ હી રખે ઔર ધીરજ સે માર્ગ કો પહેચાનને કા પ્રયત્ન કરે. આત્મા કા સ્વભાવ ક્યા હૈ, નાયક ક્યા હૈ, જ્ઞાન હૈ વહી મેં હું, યે સબ રાગ હૈ મેરા સ્વભાવ નહીં, યે વેદન ભિન્ન પ્રકાર કા હૈ ઔર જ્ઞાન કા જો જાનને કા સ્વભાવ હૈ યો જાત અલગ હૈ. એસે લક્ષણ સે રાગ કો ભિન્ન પહેચાને ઔર જ્ઞાન કો ગ્રહણ કરે તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત હોને કા કારણ બનતા હૈ ઔર દર્શન મોચલા જાતા હૈ. પરંતુ ઉસે ધીરજ હોની ચાહીએ, જો આકુલતા ઉતાવળ કરતા હૈ તો કાર્ય નહીં હોતા. ચાહે જીતના ટાઈમ નિકલે તો ભી બાર બાર પ્રયત્ન કિયા હી કરે તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત હોને કા કારણ હોતા હૈ. પ્રથમ આકુલતા તો હોતી હૈ, પરંતુ શાંતિ રખની ચાહીએ. ઇતના પ્રતિપાદન કિયા હૈ સરળ ભાષા મેં बात समझ में आए इस तरह से स्पष्टीकरण दिया है। उसके सामने इतना स्पष्टीकरण के सामने किसी मुमुक्षु ने और भी प्रश्न उठाया है कि उतावली करते हैं तो दूसरे आड़े रास्ते पे चढ़ जाते हैं, उतावल करने से तो आड़े रास्ते पे चढ़ जाते हैं, तो समाधान दिया है बेंसरे ने कि हाँ उतावल करने से नहीं होता, इसमें तो आड़े रास्ते पे चढ़ जाते हैं, उतावली करने जाए तो स्वभाव ग्रहण नहीं होता, उतावली में कृत्रिमता हो जाती है, स्वभाव को धीरज से ही ग्रहण होता है, खुद शांति से अंदर सूक्ष्म होकर के ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करे तो वो पकड़ में आए ऐसा है, उतावल करे उतावली करे तो कुछ का कुछ पकड़ में आ जाता है, मिथ्या पकड़ हो जाती है, मिथ्या संतोष मान लेता है, कार्य नहीं होता है इसलिए मिथ्या उतावली करे तो मिथ्यात्व हो जाए। खरा जिज्ञासु और खरा आत्मार्थी होवे तो उसे यथार्थ नहीं आवे, वहां तक संतोष होवे ही नहीं। उसका आत्मा ही बोल देता है कि यह कुछ अंदर की शांति, अंदर से शांति नहीं आती, इसलिए यह यथार्थ नहीं है, और यथार्थ होवे तो अंदर से ही शांति आए, अंदर से ही शांति आती है, उतावली करने से मिथ्या होता है, मिथ्या ग्रहण हो जाता है, कहीं न कहीं प्रशस्त राग में रुक जाता है, राग में रुक जाता है या मानसिक शांति में रुक जाता है। सूक्ष्म राग पकड़ में नहीं आता और अंदर शुभ राग को भिन्न कर सकता नहीं, और सूक्ष्म होकर के ज्ञान को ग्रहण कर सकता नहीं, बार बार भावना का विकल्प आता है, उससे भी नायक भिन्न है, ऐसे अंदर से यथार्थ ग्रहण होना चाहिए, ऐसा हो सके नहीं तो मिथ्या उतावल करके कोई परमार्थ को ग्रहण करने के लिए ध्यान करे, परंतु ऐसे ध्यान में यथार्थ ग्रहण होता नहीं, यह ध्यान में विकल्प शांत हो जाए इसलिए ऐसा लगे कि विकल्प है ही नहीं, परंतु विकल्प होता है फिर भी वो नहीं है, ऐसा मान लेने से तो मिथ्या हो जाता है। बहुत विस्तार से उत्तर आया है और बीच बीच में प्रश्न उठे हैं, उस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। इतना स्पष्टीकरण दिया तो उसके सामने भी एक प्रश्न आया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो, वहां तक उसे प्राप्त करने के लिए आकुलता तो स्वाभाविक होती है, फिर भी उसे दर्शन परिषद क्यों कहा और धीरज रखने में प्रमाद नहीं हो जाएगा, धीरज रखने में कहीं प्रमाद तो नहीं हो जाएगा। उसके सामने बेंसरे ने स्पष्टीकरण दिया है कि आत्मार्थी को प्रमाद नहीं होता, यह प्रमाद है या धीरज है वो पकड़ में आना चाहिए, दोनों को डिफरेंशिएट करें, उसकी भेद रेखा समझ लें। धीरज और प्रमाद में अंतर है, यथार्थ पकड़ में नहीं आए वहां तक शांति रखे वो प्रमाद नहीं है, यथार्थ आत्मार्थी है उसको सच्चा यथार्थ ग्रहण होता है कि यह प्रमाद है या धीरज है, वो यथार्थ ग्रहण कर सकता है। सम्यक दर्शन के लिए मिथ्या आकुलता करने उसी अपेक्षा से दर्शन परिषद कहा है, यथार्थ प्रकार से तो सम्यक दर्शन चारित्र होने के बाद सब परिसर लागू पड़ता है, परंतु यहाँ उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, तो भी अपेक्षा से दर्शन परिसर कहा है। अपेक्षा में एक मर्यादित बात किया है, आकुलता होती है तो उसको दर्शन परिसर बोल दिया है। सम्यक दर्शन की अप्राप्ति में होने वाली आकुलता को दर्शन परिसर कहा है, ऐसी बात है।
दर्शन परिसर आवश्यक
आता है, आता है उस भूमिका में आता है। ऐसा है कोई ध्यान में बैठते हैं तो उनके विकल्प की चंचलता घटती है और मंद हो जाता है, सूक्ष्म भी हो जाता है, तो कभी भ्रांति हो जाती है कि निर्विकल्प दशा हो गई या मैं अंतर्मुख हो गया, ऐसी भी भ्रांति किसी को हो जाती है, तो अयथार्थ परिस्थिति आ गई, ऐसा कहने का अभिप्राय। कोई खुद झूठी शंका और कुतर्क करता हो तो भी सम्यक दृष्टि डिगते नहीं, उसे निःशंक गुण ऐसा प्रकट हो गया है कि वह अपनी श्रद्धा से हिलता नहीं, डिगता नहीं, चलित नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड में खलबली हो जाए ऐसा, या चाहे जैसा दूसरा परीक्षा आ जाए और न्याय युक्ति आए तो भी स्वयं जो न्यायिक स्वभाव को ग्रहण किया है वो न्यायिक में निशंक रहता है, उसमें उसे शंका नहीं पड़ती। ऐसा परिसर सम्यक दृष्टि को होता है, सम्यक दर्शन से डिग जाए ऐसा परिसर सम्यक दृष्टि को होता है, तो फिर वो डिगता नहीं है, परिसर जय कर लेता है। जिसको परमार्थ की प्राप्ति हुई नहीं वो आत्मार्थी को भी परिसह कहा है, ये अपेक्षा से है, अपेक्षा मैंने आकुलता हुई इस मर्यादा की बात है, अपेक्षा मैंने मर्यादा सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ और आकुलता होती है उस अपेक्षा से इस जाति का परिश्रम कहाँ है। भावना यथार्थ है और प्रकट नहीं होता है उसमें दर्शन व कर्म निमित्त कारण है और उस कर्म में स्वयं का जोड़ान हो गया है। इस प्रकार से स्वयं ग्रहण करना चाहता है और ग्रहण नहीं होता है इसलिए उसे दर्शन परिसह कहा है। कोई विकल्प, कोई शंका, कोई तर्क बीच बीच में अपने को रोकता हो ये सब अंदर का परिसह है, ये सब अंदर के परिसह है। स्वरूप का निश्चय करे, वहाँ बीच में कोई शंका उत्पन्न हो जाए, शंका में भी और शंका पड़ जाए, ऐसे परमार्थ को ग्रहण करने में अंदर में अपना परिणाम में अनेक प्रकार की मुश्किल कठिनाइयाँ खड़ी होती है उसे दर्शन परिसह कहा है। तो भी धीरज से ये सब में से पार होकर के स्वयं निशंक रूप से चैतन्य को ग्रहण करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने का कारण बनता है। कितना स्पष्टीकरण दिया तो उसके सामने भी एक प्रश्न और किया है। इस स्वभाव की प्राप्ति की भी बहु आकुलता करने लायक नहीं है, बेंसर ने बोला कि बहुत आकुलता करने से उसे धीरज नहीं रहती। अगर धीरज को खो बैठता है अतः कहीं न कहीं शांति मानने में आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है तो वो यथार्थ होगी बात। ऐसा होता है तो परिस्थिति यथार्थ होगी। योग नाता ही है, ऐसा सहज रूप से नाई को ग्रहण करने के बजाय उतावली से कृत्रिमता होने से ध्यान करने को बैठे तब विकल्प मुझे दिखता ही नहीं, अब मुझे संकित हो गया ऐसा उसको हो जाता है, अर्थात यथार्थ रीति से मान्यता हो जाती है ऐसा उसको हो जाता है। मेरे विकल्प शांत हो गए हैं ऐसा भ्रम उतावली के कारण से हो जाता है। जिसको गुरुदेव ने और शास्त्रों ने नायक कहा है यह नायक ही हूँ, दूसरा कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा जिसको अंतर में से सहज रूप से ग्रहण होता है उसके हृदय ही उसका आत्मा ही निशंक पने से सहज पने से अंदर से बोलता है कि यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, उसे कहीं पूछने को जाना नहीं पड़ता, किसी को पूछना नहीं पड़ता, परंतु उसका हृदय भी सहज रूप से कहता है कि यही ज्ञायक है, यही सहानुभूति है और यही भगवान और गुरु ने कहा हुआ मार्ग है, ऐसा उसको अंतर में से सहजपने आता है। उसे किसी को पूछ करके पूछ नक्की करना पड़े ऐसा नहीं होता, अंदर से उसकी दृढ़ता अलग जाति की आती है। इतना स्पष्टीकरण किया तो किसी मुमुक्षु ने ऐसा बोला कि इसमें तो बहुत समझने लायक बात है। तो और आगे बेंसु कहते हैं कि बहुत लोग ध्यान करने को बैठते हैं और उसमें उनको प्रकाश प्रकाश जैसा दिखता है या कुछ शांति लगती है, अतः कहते हैं कि ध्यान हो गया। ऐसी कुछ न कुछ कल्पना हो जाती है, परंतु उसमें बाहर का देखने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्वयं ही है। अंदर की शांति प्रकट होए और विकल्प से भिन्न पड़ जाए, अपना तो अपना आत्मा ही उसको बोल देता है, सहानुभूति ही बोलती है। अंदर से न्यारा हो पड़ गया पड़ा हुआ आत्मा की निशंकता और दृढ़ता अलग प्रकार की ही आती है। अंतर एकाग्रता पूर्वक अपना अस्तित्व ग्रहण हुए बिना और विभाव की ओर से नास्ति हुए बिना, अर्थात भेद ज्ञान हुए बिना, ऐसे ही सच्चा ध्यान नहीं बन हो सकता। मात्र इसका विकल्प जो चंचल होता है वह शांत होए, कम हो जाए, अंदर से जुदा पड़ करके स्वभाव की अस्थि ग्रहण करे और विभाव का भेद ज्ञान होए, यानी कि द्रव्य पर दृष्टि जाए और उसके साथ भेद ज्ञान होवे, दोनों साथ में होवे, तो ध्यान की एकाग्रता सच्ची होती है। अपना स्वभाव का अस्तित्व ग्रहण करने में करते उसका ध्यान उसकी लीनता और उसमें ढलने का होता है। उपयोग को अंदर अपने और मुड़े तो उसे विकल्प शांत होता है, उसका मार्ग एक भेद ज्ञान है और वह द्रव्य पर दृष्टि करे और विभाव से नास्ति होवे तो होता है। नहीं होता है, स्वरूप की पहचान बिना ध्यान नहीं हो सकता। ऐसा ही कि वो प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी आकुलता होती है, वो दर्शन वही ज्ञान के ज्ञान नहीं प्राप्त हुई उसको, दर्शन परिषद को या अज्ञान परिषद को एक ही बात है। दूसरा प्रश्न है 191 नंबर का, पानु 127। भक्त विचारों के माध्यम से स्वभाव ग्रहण होता है क्या, ऐसा प्रश्न किया है किसी ने। समाधान, तत्व विचार में उसका ध्येय ऐसा होना चाहिए कि मैं आत्मा को ग्रहण करूं, उद्देश्य के साथ तत्व विचार होना चाहिए। अकेला मात्र ऊपर ऊपर के विचारों से या शास्त्र के विचार किया करे तो नहीं होता, उस स्वभाव का ग्रहण नहीं होता। अपने को चैतन्य ग्रहण करने का शास्त्र के द्रव्य पर्याय वगैरह सभी विचार स्वभाव एकदम ग्रहण हो जाए ऐसा नहीं होने में बीच में भले ही आ जाए तो भी उसका ध्येय ऐसा होना चाहिए कि मैं मेरे आत्मा को ग्रहण करूं, वही लक्ष्य होना चाहिए। ध्येय मैंने लक्ष्य होना चाहिए, विचार आएंगे लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मेरे स्वरूप को ग्रहण करूं। उसे अपना अस्तित्व को ग्रहण करने का लक्ष्य होना चाहिए, कोई बोला लक्ष्य होना चाहिए, यही कहा है कि मुझे मेरा आत्मा कैसे ग्रहण हो जाए, कैसे ग्रहण हो गए। यद्यपि तत्व के विचार यह मुख्य साधन है, फिर भी उसमें भी अपने को ग्रहण करने का प्रयास होना चाहिए। विचार के साथ प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, प्रयोग, ये सब होना चाहिए। एक स्वीकारो प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। मुक्षु ज्ञानी को पूछे कि यह चीज का स्वाद अच्छा है ना, तो ज्ञानी भी उसे ऐसा जवाब देता है कि हाँ यह वस्तु का स्वाद अच्छा है। उपरोक्त प्रसंग में दोनों का अभिप्राय रस, उस बीच में कौन सा तफावत है, अंतर है, कौन सा अंतर है, क्या प्रश्न है कि मुमुक्षु ने भी स्वाद अच्छा लगा और पूछा, तो ज्ञानी ने बोला कि ठीक है स्वाद अच्छा है। और मुमुक्षु का अभिप्राय और ज्ञानी का अभिप्राय में क्या फर्क है, ऐसा प्रश्न है, दोनों के अभिप्राय में क्या अंतर है, रस में क्या अंतर है। तो मुमुक्षु को स्वाद लेते वक्त उस स्वाद लेने के भाव में एकत्व हो जाता है, उतना रस है, राग का भी रस है, तो एकत्व हो जाता है, जानने का भिन्न अनुभव नहीं रहता। जबकि ज्ञानी बोलने में अच्छा है ऐसा कहते हैं, अभिप्राय में अच्छा बुरा नहीं है ज्ञानी, और भिन्न अनुभव अपने को करता है, अपना भिन्न अनुभव कर लेता है, उसमें उतना अंतर है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए भिन्न अनुभव करने वाले को रस आता नहीं है, व्यवहार से बोल देता है कि अच्छा स्वाद है, अच्छा स्वाद है, मैंने क्या कि उसी चीज का जो अच्छा स्वाद नहीं हो गए उसकी बराबरी में अच्छा स्वाद है, उतना ही कहने का अभिप्राय है। कोई अच्छा पना लगता है ऐसी बात नहीं है, ऐसा
उसका कारण उसने आत्मा में अच्छा पना स्थापित लिया है,
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ज्ञानी ने नहीं स्थापित किया,
ज्ञानी ने आत्मा में अच्छा पना स्थापित लिया है, इसे दूसरी वस्तु में अच्छा पना नहीं लगता।
अपना अपना आत्मा ही अच्छा है और कोई चीज अच्छी नहीं है ज्ञानी को, ठीक बात है। हाँ, उसका रस भी, जिसका रस तोड़ने का प्रयास और प्रयोग चलता है उसको भी तीव्र रस नहीं आता, फिर भी जब तक स्वानुभूति या स्वानुभव प्रकट नहीं होता है तब तक एकत्व हो जाता है, सूक्ष्म रूप से भी एकत्व हो जाता है, जबकि ज्ञानी को एकत्व नहीं होता। क्योंकि स्वानुभव होते ही राग और ज्ञान के बीच में दरार हो गई है। वो दरार मिटती नहीं है, चालू रहती है, ऐसी बात है। दरार माने गुजराती में तिराड़, बेजुदा पड़ गया। समयसार गाथा 17-18 में भगवान आत्मा सभी को अनुभव में आने पर भी अपने को आत्मज्ञान उदय नहीं होता है, उसमें दृष्टि की भूल है, ऐसा बताया है क्या, ऐसा प्रश्न किया है। समाधान, हाँ, दृष्टि की भूल बताई है कि उसकी दृष्टि बाहर जाती है, जैसे कोई दूसरे की, और आनंद की अनुभूति नहीं है। अनुभूति स्वरूप स्वयं होने पर भी आनंद की अनुभूति नहीं, ज्ञान असाधारण लक्षण है कि जिस लक्षण से अपने आप को पहचान सकता है। वो नायकता का नाश नहीं हुआ है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, परंतु स्वयं नायकता रूप हुआ नहीं, इसलिए उसके तरफ दृष्टि करे, उसका ज्ञान करे, आचरण करे, तो उसे आनंद की अनुभूति प्रकट हो जाए। उस तरह से ज्ञान ज्ञान को परिणमन करता है, उतनी सी बात है। सत्रह अठारह में भगवान आत्मा सभी को अनुभव में आता है, इसलिए आनंद की अनुभूति है, वो कहने का अभिप्राय नहीं है, ऐसा बात लिया है एक साइड का। आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, आनंद की अनुभूति हो गई है ऐसा मत लेना, तो सब ज्ञानी हो गए, संसार के सभी प्राणी ज्ञानी हो गए, तो वो बात कहने के कहते नहीं है। उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान रूप परिणमन चालू है, इतना ही कहना है। यानी अनुभूति माने वेदन, वेदन तो है लेकिन उसको पता नहीं, उसको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य बाहर है, दृष्टि बाहर है, तो उसको मालूम नहीं पड़ता, ऐसी बात है।
पर प्रवेश भाव तीव्र जोर से चलता है, पर प्रवेश भाव,
हाँ,
तीव्र जोर से
चलता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता, ऐसा ही है।
154 पानू प्रश्न, 154 पानू नहीं अगले पानू,
हाँ,
कोई रीते पढ़नी रुचि छूटती नहीं, પરની રુચિ છૂટી આત્માની રુચિ કેમ થાય,
કેસે હો
એની સામે નું પામ છું,
હે
એની સામે નું પામ
છું લેના હે। કિસી ભી પ્રકાર સે પર કી રુચિ હમકો નહીં છૂટતી, તો પર કી રુચિ છૂટ કર કે હમે આત્મા કે રુચિ કેસે હો, એસા પ્રશ્ન કિયા હે। ઠીક હે, પ્રશ્ન અચ્છા હે। पर की रुचि तोड़ते तोड़ते पसीना आ जाता है, पर की रुचि तोड़ने में पसीना आ जाता है। उपलब्ध रुचि होने होती है कि आत्मकल्याण करने जैसा है, પરંતુ એકત્વ બુદ્ધિ તોડતે તોડતે મુશ્કેલી યાને કઠિનાઈ હોતા હૈ, દમ નિકલ જાતા હૈ. અનંતકાળ કા અભ્યાસ હૈ, ઇસલિયે પ્રયાસ કર કર કે થક જાતા હૈ, કભી ખેદખીન હો જાતા હૈ. કરના કરને કા તો યહી હૈ, પરંતુ પુરુષાર્થ કી કમી કે કારણ સે વો વિશ્વાસ મે ડોલમડોલ હો જાય, હો જાતા હૈ. સ્વયં ભિન્ન હૈ, પરંતુ બહોત તગડા એકત્વ કર લિયા હૈ, બહોત તગડા એકત્વ કર લિયા હૈ, મોટી રસી જૈસા, મોટી રસી સે બાંધે ઉસ પ્રકાર સે એકત્વ કર લિયા હૈ. સ્વયં અનંતકાલ પર કે સાથ એકત્વપના એકત્વ કા અભ્યાસ કર રહા હૈ, ઉલ્ટા પ્રયોગ. અબ વહ અનંતકાલ કે સામને ભેદ જ્ઞાન કા અભ્યાસ કરતે ઘૂંટન કરને મેં અનંતકાલ નહીં લગતા, ભેદ જ્ઞાન કા અભ્યાસ મેં અનંતકાલ નહીં લગતા, તો અલ્પકાલ મેં કામ હોતા હૈ. ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરે, ધીરે ધીરે મેને કમજોર, મને ઢીલા ઢચ, ઢીલા અભ્યાસ કરે તો થોડા કાલ જાતા હૈ, પર ઉગ્ર કરે, શિથિલ અભ્યાસ કરે તો કાલ જાતા હૈ, પર ઉગ્ર કરે તો 6 મહિના લગે, લગતા હૈ. ઉગ્ર અભ્યાસ કરે તો 6 મહિના લગતા હૈ. અંદર મેં રુચિ ભલે આત્મા કી હો, પરંતુ એકત્વ બુદ્ધિ તોડતે તોડતે ઉસકો કઠિનાઈ હોતી હૈ ઓર બહાર મેં ચલા જાતા હૈ. અપના ઓર પર કા લક્ષણ કો પહેચાન કરકે, યહ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મેરે હૈ ઓર યહ પુદ્ગલ કે હૈ, એસે બરાબર ભેદ જ્ઞાન કરતે પ્રજ્ઞાશીલ સંધિ કે સૂક્ષ્મ મેં રગ મેને હોતી હૈ ને ઉસમે રગ મેને કે દોનો
જીરમ કેસી લાબિંડી ભાષામાં જીરમ કહેતે હૈ, જીરમ પર મારે તો બે કરતા હૈ
ઉસકો દેખ કર,
શાંત
શાંત કો દેખ કર વો વો બીચ મેં આતી હૈ રગ જૈસે એક
તોડ તોડ તોડ
નહીં દૂસરા કલર કે એક પંક્તિ આતી હૈ લીટી લીટી લીટીને શું કહે છે હિન્દીમાં લાઈન લકીર 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 આતી હૈ અલગ કર રગ અલગ કલર કી અલગ કલર કી લકીર આતી હૈ લકીર વો સાંધ હૈ વો ચારો ઓર ચારો ઓર ચારે બાજુ ફરી વળે છે એમ ગુજરાતી છે, ઓર કિસી જગ્યા પર શાંત નહીં રહેતી, એક સરીખા દો ભાગ હો જાતા હૈ. સૂક્ષ્મ શાસ્ત્ર સભી પહેલું કો દેખ લેતા હૈ, ઓર કહીં ભી જોડાન શાંત મેને જોડાન નહીં રહેતા, દો ભાગ હો જાતા હૈ એક સાથ. સૂક્ષ્મતા સે લેવે તો ગુણ કે ભેદ પર્યાય કે ભેદ યા કિસી ભી પ્રકાર કે કિસી ભી જાતિ કે રાગ મિશ્રિત ભાવ જો જો આતે હૈ એ સબસે અલગ પડ જાતા હૈ, ભિન્ન પડ જાતા હૈ. જ્ઞાન મેં સબ જાનતા હૈ, પરંતુ એકત્વ બુદ્ધિ જહાં જહાં હોતી હૈ વહાં સબસે સબ જગહ સે ભિન્ન હો જાતા હૈ. शुभ भाव कि जहाँ अपने को बहुत रस लगता है वैसे भाव, गुण पर्याय के भेद वगैरह, जो जो सूक्ष्म भाव आता है ये सब में चारों ओर से प्रज्ञा छीनी चलती है, हरी वलय से चलती है और स्पष्ट दो भाग करना कर देती है, इस चैतन्य का भाग और ये विभाव का भाग, ऐसा दो भाग कर डालती है। तो प्रज्ञा छीनी है, स्पष्ट रूप से राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न अनुभव में देती है, कहीं भी एकत्व होने नहीं देती। वो बात तो भेदज्ञान के लिए है, आगे थोड़ी रुचि का टू दी पॉइंट उत्तर पहले पैराग्राफ में आ जाता है। वो आखिरी प्रश्न लिया है 262 में, प्रथम क्या होता है, श्रद्धा या ज्ञान? समाधान, सच्ची समझ बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होती और यथार्थ श्रद्धा बिना ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता है। तो पहले तो सच्ची समझ होती है और यथार्थ श्रद्धा सम्यक श्रद्धा होती है तो ज्ञान भी सम्यक, यथार्थ माने सम्यक बोला जाता है।
कोई मनुष्य ज्ञानी के आत्मा से बात कर सकता,
ज्ञानी के आत्मा से
बात कर सकता,
कोई मनुष्य
हाँ
बात कर सकता है,
हाँ कर सकता है, क्यों नहीं करे, कर सकता है, योग्यता चाहिए।
कंडीशन बुक ही दे दो,
ठीक है।